تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 11 سے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم ہی میں سے, تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا, اور جس شخص نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یہاں سے لے کے اگلی 10 آیات تک ایک خاص واقعے کی طرف ہیں جس کو ہم سیرت میں واقعہ عفق کے نام سے جانتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگنے والے ایک الزام کی طرف اشارہ ہے. تو ہم پہلے کچھ ان حالات کی بات کر لیتے ہیں جن میں یہ سب کچھ ہوا, اور پھر اس واقعے کو حضرت عائشہ ہی کی زبانی تھوڑا سا شیئر کر کے پھر انشاءاللہ آیتوں کو ساتھ لے کر اس میں سے عمل کی باتیں لیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں واقعہ تو بیان نہیں کیا لیکن اس میں سے بہت سارے مورلز عمل کے نقطے پیش کیے تاکہ کسی بھی مسلم سوسائٹی میں لوگوں کا مزاج کیسا ہونا چاہیے اس کو سمجھا جا سکے. تو تھوڑا سا ہم ان حالات کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے, آپ کا خیال کیا تھا کہ اب یہاں امن ہوگا, چین ہوگا, کیونکہ مکہ والے ادھر رہ گئے اور ہم ان کو نہیں چھیڑتے, وہ ہمیں کچھ نہ کہیں. لیکن آپ کا یہ خیال کچھ حد تک صحیح نہ ثابت ہوا کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد تو دشمنوں کی سازشوں میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگا. مدنی دور کے 4-5 سال تک, یعنی تقریباً غزوہ خندق تک, ہر ممکن کوشش کی یہود نے اور منافقین نے کہ مسلمانوں کو ہتھیاروں سے زیر کیا جائے, مارا جائے, جنگیں لڑی جائیں, کچھ اس قسم کے حالات کیے جائیں کہ ہر طرح سے ہو. لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے کہ مسلمان نہ ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں, نہ ان کو تیروں تلواروں کا ڈر ہے, اور یہ اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کر دیتے ہیں. اس طرف ساتھ ہی ساتھ اسلام کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی, ہر آنے والے دن میں اسلام ایک طاقت پکڑ رہا تھا. حتیٰ کہ سورۃ احزاب جو تھی نازل ہوئی, جب اس کے تقریباً کچھ مہینے کے بعد سورۃ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. شروع میں ہم یہ بات کر چکے ہیں نا, سن 6 ہجری کے نصف آخر میں سورۃ جو تھی غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی. اور غزوہ خندق جس کو احزاب بھی کہتے ہیں, اگر آپ اس کو جانتے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ اسلام کی دھاک بیٹھ چکی تھی. یہ وہ جنگ ہے جس میں پہلی بار اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب تم نہیں ہم آیا کریں گے. یعنی اس سے پہلے کی ساری جنگیں جو تھی دفاعی جنگیں تھیں, ڈیفینسو وارز تھیں, کفار حملہ کرتے تھے اور مسلمان اپنے آپ کو بچاتے تھے. لیکن اس کے بعد آپ نے کہا ہم بھی آئیں گے, یعنی کافر ڈر گئے. صاف سمجھ آ گئی ان کو کہ بس اب جو عروج ہے وہ مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں, لہٰذا منافقین یہود اور مکہ والوں نے مل کر سازشیں کی کہ اب ہم کوئی اور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اب مسلمانوں کو جذباتی ٹارچر دینے شروع کیے, ایسے پروپیگنڈے کیے جائیں, ایسے حالات پیش کیے جائیں کہ مسلمانوں کی عزت پہ حرف آئے. اور اس کے لیے انہوں نے جس گھرانے کا انتخاب کیا وہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, اور آپ کی زوجہ محترمہ پیاری بیوی جو اس وقت بمشکل 15 سے 16 سال کی تھیں, ان کے اوپر زنا کی ایک تہمت لگائی. اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زبانی اگر ہم سنیں, صحیح بخاری میں بھی اور کئی دوسری چیزوں میں آپ کئی واقعات میں ملتا ہے. میں آپ کو اپنے لفظوں میں سناؤں گی کیونکہ کہانی بہرحال کہانی ہی کی طرح سنتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ غزوہ بنو مصطلق کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو آپ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے, کیونکہ سب کے حقوق برابر تھے. تو آپ ظلم کرنے کے بجائے یا ہر دفعہ اپنے ساتھ اپنی من پسند بیوی کو لے کے جانے کے بجائے ہر ایک کو موقع دیتے. یہ فرماتی ہیں کہ جب غزوہ بنو مصطلق کے لیے اللہ کے نبی جانے لگے تو اس وقت قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ میرے نام پہ نکلا, چنانچہ میں آپ کے ساتھ گئی. جنگ سے واپسی کا جب وقت تھا, مدینہ کے بالکل قریب تھے, ایک جگہ پہ رات کو پڑاؤ ڈالا گیا. اللہ کے نبی اور سب ساتھی بیٹھے. کہتی ہیں کہ صبح کے وقت मैं रफाए हाजत के लिए गई, क्योंकि उस दौर में टॉयलेट्स नहीं होते थे, औरतें खुली जगह में जाती, पर्दे के लिए थोड़ा दूर भी जाती और अमूमन अंधेरे वक्त में जाती। कहती हैं कि जब मैं पलटने लगी तो घर के करीब पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले का हार टूटकर कहीं गिर पड़ा, कोई पहना होगा। कहने लगी मैं उसको तलाश करने में लग गई। इतने में काफला रवाना हो गया। उस दौर में औरतें इतनी कम वजन थी, कहती हैं कि खुराक की कमी की वजह से हम इतनी कम वजन की थी कि मेरा हौदज उठाने वाले, यानी वो जो पालकी होती है या डोली टाइप की चीज है, उन्होंने उसको उठाकर ऊंट पे रख लिया। उनको पता ही नहीं चला कि मैं अंदर नहीं हूँ, यही सोचते रहे कि मैं अंदर हूँ और चले गए। कहती हैं कि जूं ही काफिला वहां से कूच किया, मैं हार को ढूंढते ढूंढते वापस आई। आप सोचिए, एक बच्ची है ना, हजरत आयशा को देखें तो आपके जिन में बिल्कुल एक बचपना आएगा ना। और इससे आपको पता चलता है कि इस्लाम मना नहीं करता इन चीज़ों से। एक और मौके पे भी इनका हार गुमा था, जिस पे फिर तयम्मुम की आयतें नाजिल हुई थी, जो हम पढ़ चुके हैं आयते तयम्मुम में, सूरत निसा में। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसी चीज़ों को पढ़ते हुए आपको किरदार भी तो सामने आने चाहिए ना, कि कैसे भोले किरदार थे, और जो बच्चियों की कैफियात होती हैं वही इनकी थी। बहरहाल अक्लमंद बहुत थी, वापस आई, देखा काफिला जा चुका है, एकदम तो दिल पे हाथ पड़ा ही होगा ना। लेकिन अक्लमंदी क्या की, कहती है मैं वहीं उसी जगह अपनी चादर ओढ़ कर लेट गई, इस ख्याल से कि अगर ये जगह छोड़ दूंगी मैं तो काफले वाले जब आएंगे तो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, और मैं अपने आप को भी इनसे दूर कर लूंगी, तो आखिर जब वहां जाएंगे मुझे नहीं देखेंगे तो इधर ही आएंगे। यह अमल का एक नुक्ता आप साथ साथ नोट करें, जैसे कि हम वाक्यात सुनते हुए अमल के नुक्ते साथ साथ नोट करते हैं। तो कभी भी किसी काफले से आप जुदा हों, हज पे हैं, उम्रे पे गए हैं, किसी मेले में गए हैं, कहीं भी रश वाली जगह में गए हैं, जहां किसी से बिछड़े थे वहीं खड़े रहे। होता क्या, वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो इधर नहीं थे तो हम उधर थे, वो उधर है वो उधर, रात जाते की मुश्किलात हम सहते हैं नहीं। वही कहती है मैं सो गई। कहती है इसके बाद सुफवान बिन मुअत्तल सलमा रदी अल्लाह अन्हो ये आए। इनकी जिम्मेदारी क्या थी कि जब भी कहीं से कोई काफिला कूच करता था तो ये बाद में आके वहां से गिरी पड़ी चीजें उठाते हैं, कोई इंसान पीछे रह गया, कोई बच्चा रह गया, ये भी एक अमल की बहुत अच्छी बात है। कभी किसी पिकनिक पे जाएं, दावत में जाएं, किसी एक बंदे की जिम्मेदारी रखें कि एंड पे चेक कराएं। बाद दफा हॉल्स लेते हैं, शादियों में जाते हैं, पिकनिक पे गए होते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, नहीं एक बंदा जाए और वो ढूंढे। कहते हैं कि जब ये आए उस वक्त तक इनको ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं चादर तान के लेटी हुई थी। कहते हैं कि मुझे देखते ही उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कौन सा कलमा है जो मुसलमान किसी चीज के खोने पे पढ़ता है, यानी इनको पता चल गया कि कोई शख्स जो है वो काफले से पीछे रह गया। कहती हैं कि उनके इन्ना लिल्लाह को पढ़ने की आवाज़ सुनकर मैंने चेहरे से जल्दी से चादर हटाई। फरमाती हैं कि हजरत सुफान पर्दे का हुक्म आने से पहले मुझे देख चुके थे। या नोट कीजिएगा कि सूरह अहज़ाब पहले नाजिल हो चुकी थी और सूरह नूर उसके बाद हो रही है। हम अगली आयतों में जो अहकामात पढ़ेंगे पर्दे के, ये बात गए हैं और सूरह अहज़ाब में जो थे वो पहले थे। इस जुमले पे भी ज़रा गौर फरमा लीजिए कि पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले मुझे बारहा देख चुके थे तो पहचान गए। कहती हैं सिर्फ उनके ज़ुबान से एक जुमला निकला और वो क्या कि अल्लाह के नबी की घर वाली पीछे रह गई। कोई बाहम सलाम दुआ नहीं, हाल चाल नहीं, क्या हैं, कैसी हैं, किस तरह, सिर्फ ये जुमला उनकी ज़ुबान से निकला। और उसके बाद कहती हैं कि उन्होंने अपना ऊँट ला कर मेरे करीब किया और ख़ुद दूर हो गए, अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरा और मेरे पास ला के ऊँट रख दिया। क्यों, कि ऊँटनी पे बैठते हुए हो सकता है कि कपड़ा इंसान का थोड़ा हिल जाता है, कुछ ऐसा ना हो। कहती हैं कि जब ऊँटनी पे मैं सवार हुई उन्होंने उसकी नुकेल पकड़ी और इस तरह से वो चलते गए, मैं ऊपर बैठी हुई थी और हम थोड़ी देर में काफले के पास पहुंच गए। अब आप ज़रा सोचिए कि बात क्या थी और क्या बन गई। कहते हैं कि इनको वापस आता देखकर अब्दुल्ला बिन उबई ने देखा, कहने लगा खुदा की कसम ये बचकर नहीं आई, लो देखो तुम्हारे नबी की बीवी ने रात एक और शख्स के साथ गुजारी और अब वो उसे ऐलानिया लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। देखिए जिसके दिल में गंदगी होती है ना, वो कहीं ना कहीं ज़रूर बोल देता है। ये कहती हैं कि मैं आके बीमार हो गई, सफ़र से आके, मूमन इंसान थकन की वजह से होता है, तकरीबन एक महीने तक मैं पलंग पर रही बीमारी में। मुझे कुछ खबर नहीं कि शहर में मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का बोला हुआ वो एक जुमला ज़ुबान ज़दे आम हो गया और इस तरीके से जिसको देखो वो यही बातें कर रहे। और कहती मुझे बिल्कुल ख़बर नहीं हुई, बस एक चीज़ मुझे खटकती थी और वो क्या कि पहले कभी जब मैं बीमार होती थी तो अल्लाह के नबी की मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा किस्म की केयर होती थी, ख्याल रखते थे मेरे बारे में, मुझे देखते और मेरा हाल पूछते, लेकिन अब उतना नहीं रखते थे। बीवियां तो ऐसी इशारा भी समझ जाती है ना कि मर्द किसमें, कुछ भी ना हो तो समझ जाती हैं, ये तो फिर इशारा होता है। ये कहती हैं कि बस आते घर आके कहते कैसी हो तुम, क्या हाल है, कोई बात ना करते, तो मुझे लगता कि आपके दिल में कोई बात है। तो कहने लगी कि मैंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ, मेरी तीमारदारी अच्छी कर दे। कहने लगे चली जाओ। कहती इस पे भी और दुख हुआ, मुझे कभी भी अल्लाह के नबी मैके नहीं खुशी से जाने देते थे, मोहब्बत की बात है ना। और बीवियों का हाल ही अजीब है, ना जाने दें तो रोती हैं, और कहें चली जाओ तो फिर रोती हैं। हाँ, आप देखिए जिन औरतों को ये शिकवा है कि हमारे शोहर हमें नहीं जाने देते, तो वो शुक्र करें कि मर्द ये नहीं कह आते कि चली जाओ मैके, अब आना भी ना। तो मोहब्बत की बातें हैं ना। कहती मैं चली गई। अब वहाँ गई तो एक दिन रात के वक्त कहती हैं मैं कज़ाए हाजत के लिए गई। उस वक्त घरों के पास दूर थोड़े जाना पड़ता था। कहती एक रिश्ते की खाला थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार थे, मिस्ता बिन असासा, उनकी माँ जो थी, इनकी रिश्ते में कोई खाला लगती थी जो अबू बकर की खाला साथ बहन थी। कहती मैं उनके साथ गई, और वो गरीब घराना था, इनकी किफालत पूरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक किया करते थे। कहती हैं जाते जाते उनको ठोकर लगी। जब ठोकर लगी तो उनका कपड़ा ज़रा हिला, तो वो बोलने लगी कि मिस्तो तेरा बेड़ा गरक, या कुछ इस तरह के लफ्ज़ उन्होंने बोले, गारत हो या कुछ, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं अपने लफ्ज़ों में। कहती हैं कि मैंने ये बात सुनकर उनकी माँ से कहा कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसी बात क्यों कह रही हैं। तो कहने की मैं क्यों ना कहूँ, तेरे बारे में बातें करने में सबसे आगे तो वही है। कहेंगी कौन सी बातें, कहा तुझे नहीं पता सारे शहर में तेरे खिलाफ़ बातें हो रही हैं। और उस पर कहती उन्होंने मुझे सारी बात सुना दी, जो बहुत सारे सवालों का जवाब थी कि अल्लाह के नबी मेरे साथ इस तरह क्यों है। कहती उसके बाद तो बस मेरा खून खुश्क हुआ और मेरे आंसू भी खुश्क हुए, जो हाजत थी वो भी ना की, वापस आई और सारी रात रो रो के गुजारी। कहती हैं कि ये वो दिन थे कि अल्लाह के नबी भी बड़े मुस्तरब थे। आप देखिए कि इतनी प्यारी बीवी हो तो अल्लाह के नबी सुकून से बैठ सकते हैं। कहते हैं इन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी ने हज़रत उसामा बिन जैद को बुलाया और हज़रत अली को कि बताओ क्या कहते हो, ये जो बातें आयशा के बारे में हो रही हैं आपका क्या ख्याल है। तो उसामा ने, जो घर के बच्चे थे, कहने लगे कि मैंने तो कभी भी भलाई के सिवा कुछ आपकी बीवी में नहीं देखा, ये सब झूठ है, बातिल बातें, इसको छोड़ दें। और तहकीक करना चाहें तो आप उनकी लौंडी को बुला के पूछ लें, क्योंकि घर का मुलाजिम बहुत अच्छा जानता है, ये भी बड़ी एक अच्छी बात है। कहते हैं कि आपकी लौंडी को बुलाया गया, बरीरा उनका नाम था, कहा कि बता कि तू आयशा के साथ साथ रहती है, तुझे ये कैसी लगती है, हो सकता है इसकी आदत ऐसी है वैसी है। लौंडी कहने लगी कि उस जात की कसम जिसने हक के साथ आपको भेजा है, मैंने उनमें कोई बुराई नहीं देखी कि जिस पर मैं बात करूं, हाँ बस एक ऐब है उनमें, और वो क्या कि मैं आटा गूंद कर किसी काम को जाती हूँ और कह जाती हूँ कि बीवी ज़रा इस आटे का ख्याल रखना, मगर वो सो जाती हैं और बकरी आती है और आटा खा जाती है। सरासर भोलपना, लड़कपन, उम्र की बातें, इसके अलावा मैंने देखा, यानी जो औरत इतनी भोली है कि उसको आटे का नहीं फिक्र रहता, तो उसको फिर अपनी इज्जत का क्या होगा, और ऐसी बातें तो उसमें नहीं होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि इन बातों को सुनकर इतने यानी अंदर ही थे, आपने उस वक़्त फिर कहा कि मुसलमानों, कौन है जो इस शख्स के हमलों से मेरी हिफाजत करे, मेरी इज्जत बचाए, जिसने मेरे घर वालों पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे अजियत दी, तकलीफ़ दी, मैंने तो खुद कभी अपनी बीवी में कोई बात नहीं देखी। हज़रत अली ने कहा अल्लाह के नबी कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, आप आयशा को तलाक दे दें, आपको अल्लाह ताला कोई और बीवी दे देगा। इसी तरह उसैद बिन खुज़ैर, यानी जितने मुतनी बातें मशवरे सलाह चल रही थी, उसैद बिन खुज़ैर जो थे, या बाज़ कहते हैं साद बिन उबादा, जो अनसार में से थे, इन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर वो हमारे कबीले का शख्स होता तो हम तो उसकी गर्दन उड़ा दें, लेकिन वो बनु खजरज से है। यानी हर एक तैयार था कि अब्दुल्ला बिन उबई से मामला करे, लेकिन अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी बात को भी पी लिया और किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। कितना बड़ा सबक है इसमें उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों पे आपे से बाहर हो जाते हैं और अपनी ज़ाती चीज़ों को बुनियाद बना के इस्लाम को बदनाम करते हैं। किस्सा मुख्तसर के एक दिन क्या हुआ कि हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी मेरे घर में आए हुए थे। कहने लगे कि आयशा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा फरमाइए। कहा देखो अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया ना तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, और अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो अल्लाह तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देगा। کہتی ہیں بس یہ جملہ تو سن کے تو پھر دل کا حال برا تھا کہ اللہ کے نبی اب آپ بھی یہ کہتے ہیں، آپ کو بھی یہ شک ہونے لگا ہے؟ کہا ابو بکر آپ ہی کچھ بولیے. کہا میں تو کچھ نہیں بولتا، میں تو کچھ نہیں کہوں گا. اور کہتی ہیں میرے ماں باپ کا حال کیا تھا کہ رو رو کے ان کا برا حال تھا، سارا وقت قرآن پڑھتے ہوئے اور روتے رہتے، انتہائی اعصاب شکن حالات ہوں گے. تقریباً ایک مہینہ گزر گیا اس کے اندر اور لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو نہ بچا سکے. بالآخر کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ عائشہ سچ کہہ دو جو بھی کہنا ہے، کہنے لگیں کہ میں ایک بری بات کو سنتے سنتے اب آپ کو اتنا سب کو یقین ہو گیا کہ آپ کو وہ سچ لگنے لگی ہے، اور اب میں کچھ بھی بولوں گی آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں تو آپ کو وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا. کہتی ہیں کہ گھبراہٹ کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہ رہا، اور میں نے کہا میں تو وہی کہوں گی کہ جو یوسف کے باپ نے کہا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میرا شکوہ، میرا غم، میری شکایتیں میرے رب کے آگے ہیں اور اللہ ہی میرے مدد کرے گا اس پہ جو لوگ میرے بارے میں گڑتے ہیں. کہتی ہیں مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ میرے بارے میں اللہ کے نبی کو یا تو کوئی خواب دکھا دے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، میری بے گناہی ثابت ہوگی. اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کی حالت بدلنے لگی، آپ کے چہرے پہ پسینہ اور وہی آثار جو وحی کی صورت میں ہوتے تھے. کہتی ہیں مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کچھ ڈال دے گا، لیکن کہتی ہیں یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں قرآن پاک میں 10 آیتیں نازل کر دے گا. کہتی ہیں جب وحی کی کیفیت سے آپ نکلے تو آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے بہت بادلوں والے دن کے بعد سورج چمکتا ہے، کھلا ہوا، کیونکہ اس طرح آپ تو آپ کے اوپر بھی تھا نا. اور آپ نے کہا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات نازل کر دی، تیری بے گناہی نازل کی، تیرے بارے میں قرآن اترا. قرآن اتر گیا. کہتی ہیں میرے ماں باپ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر. کہنے کہ میں تو نہیں کروں گی ان کا. کہا میں ان کا کروں گی جس رب نے میری بے گناہی ثابت کی. آپ کہیں گے ہائے عائشہ نے اللہ کے نبی کو ایسے کہا. نہیں، اللہ کے نبی کو نہیں کہا، ایک امتی اور ایک نبی کا بھی تو تعلق تھا نا، اور شوہر اور بیوی بھی تھے. اور اللہ کے نبی نے اگر عائشہ کو یہ آ کے باتیں پوچھی تو کیا ایک شوہر ہونے کے ناطے پوچھی تھی کہ تم نے کچھ کیا ہے تو بتا دو؟ نہیں، اس وقت اللہ کے نبی ایک نبی تھے اور اپنے سامنے ایک امتیہ کو پوچھ رہے تھے. اور اس طرح کہتی ہیں کہ تقریباً ایک مہینے کی ٹینشن کے بعد پھر مدینہ کے اندر سکون آیا. پھر اس کے بعد آگے جو کہانیاں ہوئیں وہ آگے دیکھیں گے. بات شروع کی تھی عبداللہ بن ابئی نے، ابتدا میں اس کا ساتھ دیا تھا منافقین نے، ان سب کو تو کچھ نہیں کہا گیا، سب اللہ کے حوالے، کل پوچھیں گے، اللہ کی عدالت بہت بڑی ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے قصص کی آیتیں، لیان کی باتیں، اور یہ وہ ساری آیتیں اصل میں اسی واقعے کی تمہید تھی کہ کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑ دو دنیا کی عدالت میں اور مزہ کر لیں. لیکن تین لوگ مخلصین میں سے، جن میں دو مرد اور ایک عورت تھیں، انہوں نے بھی بات آگے بڑھا دی تھی، ایسی سنی بھائی سنائی بات آگے کر دی گئی، تو ان کے اوپر پھر قذف کی سزا لگی تھی، 80 کوڑے. وہ کون تھے؟ اب آیتوں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. اس واقعے کے ساتھ اگر تھوڑے سے عمل کی باتیں ابھی نوٹ کرواؤں اور کچھ چیزیں ساتھ ہی لیں تاکہ پھر کوئی رہ نہ جائے. پہلی بات ایک ہے کہ اس واقعے سے ہمیں جو پتہ چل رہی ہے وہ کہہ کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیب جانتے ہوتے تو اتنے دن اضطراب میں رہتے؟ دوسری بات ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے الگ کر کے نہیں رکھ سکے. پھر اسلام دشمنیاں تو جو ہمیں دکھ ہی رہی ہیں وہ تو ساری سمجھ میں آ رہی ہیں اس آیت کے اندر. ایک اور چیز جو اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ہر مشکل جو آتی ہے نا شروع میں بڑی مشکل لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہلکی ہو جاتی ہے. کبھی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے، بس اس سے 10-15 دن آگے جا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ٹل چکا ہوگا، اور کچھ کم و بیش وقت کے ساتھ چیزیں ختم ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس واقعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ملتی ہے. چند جملے کہنا چاہوں گی حضرت عائشہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ کیا ان کی فضیلت تھی دوسری عورتوں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ملتا ہے کہ عائشہ کو دنیا کی دوسری عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ثرید کے کھانے کو دوسرے کھانوں پر. ثرید عربوں کا ایک بڑا مرغوب کھانا تھا गोश्त और उसमें शोरबा होता था, उसमें रोटियां भिगोते थे, कह लें आप आज के दौर में हमारी हलीम कह लें, कोई इस तरह की चीज़, और अल्लाह के नबी को बड़ा पसंद था। फिर आप देखिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन औरतों में से हैं कि जो बलूगत से पहले ही मुसलमान हो चुकी थी, जिन्होंने आँख ही इस्लामी माहौल में खोली। फिर ये वाहिद वो बीवी हैं जो कुंवारी थी, अल्लाह के नबी को मिली। आपके अलावा हर औरत जो थी वो पहले से या तो तलाक याफ्ता थी या बेवा थी। फिर हज़रत आयशा अल्लाह ताला अन्हा के साथ अल्लाह के नबी एक लिहाफ में होते थे और कुरान नाजिल होता था, यानी इतनी क़ुर्बत से अल्लाह ताला ने उनको कुरान दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लम के बाद सबसे ज़्यादा अरसा ये ज़िंदा रही, तकरीबन 50 ईयर्स प्लस की फ़ौत हुई थी, और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ये 18 साल की थी। 18 साल की एक लड़की बेवा हो और 50 साल की ज़िंदगी कैसे गुजरी होगी। उन्होंने इल्म के लिए अपने आप को वक्फ़ किया था। कहते हैं कि आधा इल्म जो आज हमें मिला है वो आयशा से मिला है। अगर आयशा ना होती, अल्लाह के नबी की निजी यानी पर्सनल ज़िंदगी के कई मैटर उम्मतियों तक खुलते ही ना। बड़े बड़े सहाबा कराम हज़रत आयशा से इल्म हासिल करने जाते थे। आज भी अगर फतावा आयशा को जमा किया जाए तो पूरी एक किताब है। एक मुस्नद आयशा के नाम पे किताब मेरे पास भी थी पाकिस्तान में, कि जिसमें सिर्फ हज़रत आयशा से रिवायत करदा रिवायतें हैं। सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत हुई हज़रत अबू हुरैरा से, तो दूसरे नंबर पे हज़रत आयशा, यानी औरतों में ये औरत थी। फिर खूबसूरत थी। फिर इनकी एक और ख़ास चीज़ है, और वो क्या कि इनकी शादी से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनकी तस्वीर अल्लाह के नबी सल्लम को दिखाई थी। ये ख़ास इनकी बात है कि जिससे पता चलता है कि हज़रत आयशा को अल्लाह ताला ने बहुत आला मुकाम देना था। जिनके मुकाम बड़े होते हैं, जिनको अल्लाह ने दर्जे बड़े देने होते हैं, उन पे आजमाइशें भी बड़ी आती हैं। औरत की सबसे कीमती चीज़ तो इज़्ज़त ही है ना, और ख़ास तौर पे जब कोई इस तरह के हालात का शिकार हो जाए तो फिर आप सोचिए कि उसके लिए क्या बड़ी बात होगी। यहाँ देखिए कि मुनाफिकीन ने शैतान के कदमों पर चलते हुए जो इल्ज़ाम लगाया वो अल्लाह के नबी के घराने पर था, ये भी समझ लीजिए। आज हम देखते हैं अल्लाह के नबी की शादियों को हवा बनाया जाता है, आज हम देखते हैं अल्लाह के नबी के किरदार पे छींटे डाले जाते हैं। वजह क्या है? वही वजह जो उस दौर में थी कि दीन का काम करने वालों को बदनाम कर दो। शैतान के हरबों में हम पढ़ चुके हैं बनी इसराइल सूरत के दौरान कि ट्रिक्स शुरू में पहले कुफर पे मुबतला करता है, फिर शर्क पे, वहाँ से बच जाओ तो बिदत पे, फिर कबीरा पे, फिर सगीरा पे, और उसके बाद उसका मरहला क्या होता है कि दीन की बात कहने वालों को बदनाम कर दो। कोई ऐसा ख्याल दीनदारों के बारे में लोगों के दिल में डाल देता है कि जिसकी वजह से वो अच्छे भले दीन की तरफ आते आते हट जाते हैं। कोई उसकी हकीकत हो ना हो, वो उस बात से अपने दीन को कमज़ोर कर लेते हैं। यहाँ बिल्कुल वही था। चाहते थे कि अल्लाह के नबी के घराने को बदनाम करें, ताकि कहा जाए लो जो नबी अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका वो दूसरों की हिफाजत क्या करेगा।